आशिका कब से अभिमान से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनकी शादी हुई कैसे थी, लेकिन अभिमान उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इस बीच रचित उनके कमरे में आया। आशिका ने अक्सर अभिमान को यही कहते सुना था कि उसकी और आशिका की शादी रचित की वजह से हुई थी। ऐसे में रचित ही उसे सब सच बता सकता था, लेकिन अभिमान के डर से वो भी चुप था। ऐसे में आशिका गुस्सा हो गई थी और वो वहां से बाहर जाने लगी। मजबूरन अभिमान और रचित को उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। अभिमान ने उसे ये तो बता दिया था कि उसने कॉलेज में आशी की फ्रेंड मानसी को प्रपोज किया था, लेकिन आशी ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी और आशी से बदला लेने के लिए रचित ने उन दोनों की शादी करवा दी थी, लेकिन अभी भी उसने शादी किस तरह हुई थी ये नहीं बताया था। आशिका उन दोनों की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। तुम दोनों मुझे सीधे सीधे बता रहे हो या नहीं? कौन सा मैं तुम दोनों की जान लेने वाली हूँ? आशिका ने चिढ़कर कहा। रचित ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, उस वक्त हम LA में पढ़ते थे और मेरा एक फ्रेंड हैकर था। जैसे ही रचित के मुंह से हैकर शब्द निकला, आशिका की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने अविश्वास से सिर हिलाया और कहा, डोंट टेल मी कि तुम लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन वेबसाइट को हैक किया और वहां हम लोगों की डिटेल्स डाल दी थीं। जैसे ही आशिका ने अपनी बात खत्म की, रचित ने हां में सिर हिला दिया था। उसने आगे बताते हुए कहा, उसके पास अभिमान की तो पूरी डिटेल्स थीं, लेकिन तुम्हारा और आशी का नाम सेम होने की वजह से शायद वो कन्फ्यूज़ हो गया होगा और उसने आशी के बजाय तुम्हारी ID नंबर डाल दिए थे। सच तो ये है कि तुम दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं थी, बस उसने तुम दोनों का डेटा मैरिज रजिस्ट्रेशन साइट में डाल दिया था। लेकिन ये इलीगल है, देखा जाए तो बस कुछ डिटेल सिस्टम को हैक करके भरी गई थीं। हम दोनों की कभी शादी हुई ही नहीं, आशिका ने आंखें बड़ी करके कहा। उसे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस तरह उसकी शादी तक रजिस्टर करके बैठा है। क्या फ़र्क पड़ता है, पहले नहीं हुई थी तो अब हो गई है, और वैसे भी हम दोनों को इसका फ़ायदा ही हुआ है। मुझे ना हुआ हो तुम्हें ज़रूर हुआ है। तुम उस दिन मिस्टर राजवंश से शादी करने से बच गई और तुम्हें इतना अच्छा पति भी मिल गया, अभिमान ने मामले को हल्का करने के लिए कहा। वो आशिका को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आशिका ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। तुम लोग इम्पॉसिबल हो, हमेशा से हैकिंग का गलत इस्तेमाल करने के बारे में सोचते आए हो। जैसे तुमने उससे शादी की थी वैसे डिवोर्स भी रजिस्टर कर देते, आशिका ने रचित को सख्त निगाहों से देखते हुए कहा। उस दिन भी मैंने उसको मजाक बोलकर कन्विंस किया था, वो काफी डर गया था और उसने आज तक मेरा कॉल नहीं उठाया। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फिर कोई मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस ना कर दे, बस यही सोचकर मैंने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, रचित ने बेपरवाही से जवाब दिया। अभिमान, आशिका और रचित अपनी ही बातों में खोए हुए थे और उनकी आवाज भी काफी तेज थी। इस बीच निशा कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। तो इसका मतलब ये लड़की कभी मेरे बेटे की पत्नी थी ही नहीं, ना ही ये किसी भी तरह से उसके लायक है, वो सही कह रही थी। पता नहीं अभिमान को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि जो लड़की उसके पापा का दिमाग खराब करके बैठी है, वो ना जाने कितने लड़कों को अपने पीछे रखती होगी। ना तो बातों से और ना ही हरकतों से वो सभ्य लगती है, कपड़े तक पहनने का सलीका नहीं है, निशा बोली। निशा ने अपना मोबाइल निकाला और आशी के मैसेज का जवाब दिया, जिसने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। उन लोगों को वहीं पर छोड़कर निशा आशी से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी। आशी को पूरा यकीन था कि निशा उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। जैसे ही निशा वहां पहुंची, आशी तुरंत उसके पास गई और उसके गले लग गई थी। वो रोने लगी थी। आंटी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह देखा है। मुझे नहीं पता अभिमान मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गया कि उसने तृप्ति बजाज की बेटी से शादी कर ली। जो भी हुआ मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप उसे समझाइए, आशी ने आंसू बहाते हुए कहा। निशा आशी से अलग हुई और उसके आंसुओं को साफ किया। वो उसे एक टेबल के पास लेकर गई। आशी के बैठने के बाद निशा उसके पास बैठ गई थी। पहले तो मुझे भी यही लगता था कि अभिमान को वो लड़की पसंद है, तो मैं उसकी खुशी के लिए बाकी लोगों के खिलाफ जा सकती हूँ, लेकिन कोई इस शादी से खुश नहीं है। अभी मैंने उनकी बातें सुनी थी, मुझे उनकी बातें ज़्यादा समझ नहीं आईं, पर इतना ज़रूर पता है कि पहले उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर पता नहीं कैसे कुछ कागज़ के जरिए वो अभिमान को अपने जाल में फंसा सकी है, निशा ने हिचकिचाते हुए बताया। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ऊपर से टेक्नोलॉजी के बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, उसका ज़्यादातर समय बंद कमरे में बीतता था। आशी पहले से ही अपने और अभिमान की शादी का सच जानती थी और ये भी कि किस तरह रचित ने एक हैकर के जरिए उनकी शादी को रजिस्टर करवाया था। आप ठीक कह रही हैं आंटी, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं यहाँ किसी को बुलाऊं, आशी ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या कोई और भी आया है यहाँ? निशा ने पूछा, वो इधर उधर देखने लगी थी। आशी ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज किया। अगले 5 मिनट में तृप्ति उनके सामने थी। तृप्ति को देखते ही निशा ने सख्त आवाज में कहा, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरे पास्ट की वजह से आप सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं आपसे किसी तरह की हमदर्दी भी नहीं चाहती मिसेज राजवंश। बस इतना बताना चाहती हूँ कि उस लड़की की शक्ल भले ही मासूम है, लेकिन वो मुझसे भी दो कदम आगे है। मुझे आपके सामने कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन आज जो आपके पति उसके पीछे पागल हुए घूम रहे हैं, उसके पीछे पूरी तरह उसी का हाथ है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन पैसों के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो दोनों तो शादी तक करने के लिए चले रहे थे, लेकिन उसी रोज आशिका को अपनी शादी किसी और के साथ रजिस्टर होने का पता चला और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। किस्मत देखिए, वो आदमी मिस्टर स्काई का बेटा निकला। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। तृप्ति ने मासूम बनते हुए एक लंबी चौड़ी सी कहानी निशा को सुना दी थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस दिन की तस्वीर निकाली जिस दिन आकाश और आशिका की शादी लगभग होने ही वाली थी। आसपास से बहुत सारे गुंडे गन पॉइंट पर उन्हें लेकर खड़े हुए थे। तृप्ति ने कहा, आप खुद देख सकती हैं कि किस तरह इन गुंडों ने हमें जबरदस्ती इस शादी में रहने पर मजबूर किया। कहीं से भी आपको इसके कपड़े और मेकअप देखकर पता चल रहा है कि क्या इसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। मैंने आशुतोष और काजल के साथ बहुत गलत किया है, बस मैं उनकी बेटी का साथ देकर उस गलती की भरपाई करना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगी? निशा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर आशी के चेहरे की तरफ देखा। आशी की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो ऐसे दिख रही थी जैसे आशिका ने अभिमान को उससे छीनकर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? अभिमान ने बताया कि अगर वो लड़की हमारे घर से चली गई तो आकाश उसे ले जाएंगे और उससे शादी कर लेंगे। हर सूरत में मेरा घर तो बर्बाद ही हो रहा है, निशा ने मायूस स्वर में कहा।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कैसे भी करके उस लड़की को राजवंश हाउस से दूर लेकर जाना है। उसे अपने विश्वास में लेना है, बाकी आगे का हम देख लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो ना तो आपके बेटे की जिंदगी में फिर कभी आएगी और ना ही आपके पति की जिंदगी में। मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी, तृप्ति ने निशा को आश्वासन दिया। कुछ भी करने से पहले निशा ने आशी की तरफ देखा। आशी उसकी आंखों में उठ रहे सवाल को समझ सकती थी। पुराने वक्त में जैसी तृप्ति की हरकतें थी, कोई भी उस पर यकीन करने से पहले दो बार सोचेगा। आशी ने निशा के हाथ को सहलाया और नर्म स्वर में बोली, आप इन पर यकीन कर सकती हैं, ये सच में सुधर गई हैं। पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब इन्होंने आशिका की सच्चाई मुझे बताई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, अगर आशिका अच्छी लड़की होती तो मैं अपने दिल को समझा लेती और ये सोच लेती कि अभिमान उसके साथ खुश है, पर आप खुद देख सकती हैं कि ये लड़की अभिमान के लायक ही नहीं है। निशा ने आशी और तृप्ति की बात पर हामी भरी और कहा, उसे घर में कोई पसंद नहीं करता है, मुझे भी वो अजीब लगती है, बहुत कम बोलती है और एक ही दिन में बस एक बार उसने बाहर कदम रखा था। हाँ, वो इसी तरह दूसरों के सामने खुद को मासूम दिखाती है। आप चिंता मत कीजिए, उस मुसीबत की जड़ को मैं हमेशा के लिए आप लोगों की जिंदगी से दूर ले जाऊंगी, तृप्ति ने जवाब दिया। अभिमान की खुशी का सोचते हुए निशा ने उनका साथ देने की मंजूरी दे दी थी। निशा ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो वहां से चली गई, लेकिन तृप्ति और आशी अभी भी उस रेस्टोरेंट में मौजूद थीं। मैंने कहा था ना, ये बहुत बेवकूफ है और इसे मनाना चुटकियों का काम है, तृप्ति ने गर्दन टेढ़ी करके कहा। हाँ, ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन आपने उन्हें ये वादा क्यों किया कि आप उसे अभिमान और आकाश राजवंश दोनों की जिंदगी से दूर लेकर चली जाएंगी? आशी ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा। मैं ये सोच रही हूँ कि जो काम मैं सालों पहले नहीं कर पाई वो अब कर दूंगी। यहाँ से जाते ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जल्दी उसका किस्सा खत्म हो जाएगा और मेरा भी उससे पीछा छूट जाएगा, और तुम भी तो यही चाहती थी, तृप्ति ने जवाब दिया। आशी ने कुछ पल सोचा, उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने तृप्ति के चेहरे की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। मैंने आकाश राजवंश के बारे में पता किया है और सच में वो आदमी काफी खतरनाक है। वो आशिका को पसंद करता है और आशिका ने अभिमान से शादी करके उसे बुरी तरह गुस्सा दिला दिया है। मैं चाहती हूँ कि आशिका अभिमान के बजाय आकाश राजवंश के पास चली जाए, ताकि अभिमान को भी समझ आए कि वो कभी उसकी थी ही नहीं। आशिका के लिए जो जिंदगी हम चाहते हैं, आकाश राजवंश उसका हाल उससे भी बुरा कर देगा। वैसे भी आपको आपके लोन के पैसे नहीं चुकाने क्या? हाँ, लेकिन आशिका की आइडेंटिटी बाहर आने का भी खतरा है, ऐसे में उसे जिंदा रखना सही होगा, तृप्ति ने उलझन भरे स्वर में कहा। आशिका को दोबारा जिंदा छोड़कर वो अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती थी, आशी ने जवाब में कहा। आकाश राजवंश कभी अब उसे छोड़ने की गलती नहीं करेगा। आप इस प्लान पर मेरे हिसाब से चलिए, आई प्रॉमिस, जितनी तकलीफ आप उसे नहीं दे पाई थी उससे कहीं ज्यादा मैं उसे पहुंचा सकती हूँ। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे मेरे प्यार को छीना है और मैं उसे मौत जैसी आसान सजा नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, तृप्ति बोली। वो आशी का साथ देने के लिए तैयार थी। वैसे भी तृप्ति ये सब अपनी बेटी के लिए ही कर रही थी। आपस में सब कुछ डिसाइड करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गई थीं। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त अभिमन्यु ऐशिका को लेकर राजवंश मेंशन पहुंचा। जैसे ही वे गाड़ी से निकले, उन्होंने देखा कि निशा भी इस वक्त कार से बाहर आई थी। वो अकेली थी। ये कौन है? ऐशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा। ये अभिमान की मॉम है, लेकिन ये कभी अकेले बाहर नहीं जाती और चेहरे से परेशान नहीं लग रही तुम्हें, अभिमन्यु ने निशा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो उनके हर एक हाव-भाव को गौर से देख रहा था। हाँ, जिस तरह से तुमने अचानक उन दोनों की शादी करवा दी, हर कोई परेशान हो गया है। इस तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, अंदर चलकर अभिमान और आशिका से मिलते हैं, इशिका ने जवाब दिया, जिस पर अभिमन्यु ने हामी भर दी थी। अभिमन्यु और इशिका अंदर सीधा अभिमान से मिलने के लिए जा रहे थे। अभिमन्यु को पहले ही निशा के हाव-भाव अजीब लगे थे, ऊपर से उनके सामने आने पर भी निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कुछ तो अजीब है, अभिमन्यु ने निशा की तरफ देखकर अपने मन में कहा। जल्द ही वे दोनों अभिमान और आशिका के कमरे में पहुंच चुके थे। रचित वापस चला गया था, और जिस तरह से आशिका को अपनी शादी के बारे में पता चला था, वो अभिमान से नाराज थी। वो डार्क वेब और हैकिंग की दुनिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब भी कोई हैकिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आशिका एक तरह से अपनी इस नई दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं उसकी पुरानी दुनिया में हलचल सी मची हुई थी। हमें हर हाल में ऐश चाहिए, ये सिर्फ हमारी ही नहीं बाकी देशों की भी सिक्योरिटी का मामला है। रिहान को कॉन्टैक्ट करो और बोलो कि ऐश से कहे कि अब वो अपनी ड्यूटी संभाल ले, एक आदमी ने कहा, जो इस वक्त स्पेशल एजेंट फोर्स की यूनिफॉर्म में कुछ ऑफिसर्स के सामने बैठा हुआ था।